हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। तो आठवीं सदी में एक महान संत हुए, उनका नाम है जयदेव गोस्वामी। आपने नाम सुना है उनका ना, जयदेव गोस्वामी का? नहीं सुना है। जयदेव गोस्वामी बड़े ही प्रसिद्ध संत हैं। हरे कृष्णा। श्री कायरे भवन से छोड़ चल छोड़ 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 दे उसको। हरे कृष्णा। तो जयदेव गोस्वामी बड़े प्रसिद्ध संत हैं। आठवीं सदी में उनका जीवन काल था। तो सबसे पहले जयदेव गोस्वामी गोस्वामी बनने के पहले ब्रह्मचारी थे और वो जगन्नाथपुरी में रहते थे और उनका आजीवन ब्रह्मचारी रहने का प्रण था। जगन्नाथपुरी में एक ब्राह्मण था, भगवान का भक्त था बड़ा अच्छा। उसको एक कन्या थी पद्मावती नाम की। तो वो जगन्नाथ जी के पास जाके बहुत रोया कि मेरी कन्या के लिए कोई अच्छा वर ढूंढो। तो जगन्नाथ जी प्रसन्न हो गए उस पर और उसने उस ब्राह्मण को स्वप्न दिया और स्वप्न में वो पता बताया जहाँ पर जयदेव रहते हैं। उन्होंने कहा कल सवेरे अपनी कन्या को लेके उसके पास जाओ। और मेरे ख्याल से राधा माधव का विग्रह भी था उनका, वो भी लेके जाओ और कन्या को शादी में दान कर दो, उनको कन्या दान कर लो। और साथ में जयदेव को भी स्वप्न दिया कि कल एक ब्राह्मण आएगा उसकी कन्या को लेकर, वो मेरी मूर्ति भी लेकर आएगा, तो आप उनको अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करना। तो जयदेव जी कहते मैं तो यहाँ पर ब्रह्मचारी बनने के लिए आया था। तो भगवान ने कहा कि मेरी ऐसी इच्छा है कि आप गृहस्थ बन जाओ। तो अगले दिन सवेरे ब्रह्मचारी जयदेव के पास में ब्राह्मण आता है पद्मावती को लेकर और वो समझते भगवान की इच्छा है तो मुझे शरणा समर्पण करना ही पड़ेगा। तो उनका विवाह होता है और फिर भगवान उनको प्रेरणा देते हैं कि आप मायापुर चले जाओ। तो मायापुर में एक सुंदर जगह है, उसका नाम है चंपाहाटी। आप लोग में कितने लोग यहाँ पर गए हैं, कोई गया उधर चंपाहाटी में? यस, चंपाहाटी ये सुंदर जगह है मायापुर में जो गंगा किनारे हैं और वहाँ पर खदीर वन जो है वृंदावन धाम का वो प्रकट हो गया है। खदीर वन में भगवान ने बकासुर को मारा था, बगुले के रूप में था बकासुर, उसको भगवान ने उसका वध किया था, वो वहाँ पर प्रकट हुआ है। खदीर वन में उपनंद बाबा का खिरक था, खिरक यानी पानी पीने का तालाब था, माधव सरोवर, वहाँ पर उपनंद बाबा अपने गायों को रखते थे और दूध पिला अपना पानी पिलाते थे उनको। और खदीर वन में कत्था के पेड़ थे बहुत सारे, इसलिए खदीर वन कहा गया है। कत्था पान में डालते ना, पान में लाल रंग आता है उसका, उसको खदीर कहते हैं संस्कृत में। उसको खदीरादी वटी बनाते हैं उसके गले के लिए, खदीरादी वटी, वो खदीर वन उसके नाम से प्रसिद्ध है। और उसी पर बाल लीला में भगवान ने बकासुर का वध किया था। तो वो खदीर वन महाप्रभु की दया से मायापुर में प्रकट हो गया है चंपाहाटी में। और चंपाहाटी वो जगह है जो चंपकलता देवी का कुंज है वो। और चंपाहाटी में चंपा के फूल खिलते हैं, आज भी खिलते हैं, उस समय बहुत ज़्यादा खिलते थे। तो पद्मावती और जयदेव गोस्वामी जी वो बड़े प्रेम से रोज़ चंपा के फूल बीनकर उनकी माला बनाकर राधा माधव की सेवा करते थे। ये उनका सुंदर गृहस्थी जीवन था। नहीं, इनका को जमने रहे। ओके, तो चंपाहाटी में पहले वो चंपक वन था जहाँ पर चंपा के फूल बिनकर जयदेव और पद्मावती रोज भगवान की सेवा करते थे माला बनाकर। ये नहीं होने वाला प्रभु जी, छोड़ो उसको। तो उसके बाद में वो व्यापारी का केंद्र बन गया, लोग उसका बिजनेस करने, इसलिए चंपाहाटी नाम पड़ गया उसका। चंपा को इतने फूल आते तो बेच सकते हैं, पैसा बना, इसलिए व्यापारी लोग आ गए वहाँ पर। लेकिन जब जयदेव जी वहाँ रहते थे तो जयदेव जी एकदम सिंपल झोपड़ी में रहते थे वहाँ पर। तो जब मायापुर के राजा को ये पता चला कि हमारे राज्य में एक बहुत बड़े संत आ गए हैं, तो वो उनको मिलने आते हैं, तो जयदेव जी उनको मिलते नहीं हैं। वो कहते हैं कि हम पैसे वाले लोगों को मिलते नहीं, आप तो राजा हो, आपकी बहुत पत्नियाँ हैं, आपके बहुत ऐश्वर्य है, हम आपके पास मिलना नहीं चाहते हैं, अगर दोबारा आप आएंगे तो हम मायापुर छोड़ के चले जाएंगे। तो राजा को बड़ा दुख होता है कि मैं राजा होने से क्या मतलब है, राजा हो के अगर मैं संत को नहीं मिल सकता तो राजा होने से क्या मतलब है। तो वो अगली बार एकदम सूती वस्त्र पहनकर, एक वस्त्र पहनकर आता है, बिल्कुल राज वस्त्र राज अलंकार उतार के पैदल चल के आता है, पैर नंगे पैर, और फिर विनती करता है कि मेरी ऐसी इच्छा है कि मैं आपके लिए घर बनाऊं ताकि आप आराम से रह सकें, अपने सेवा कर सकें। तो वैसे तो राजा को वो दिल से नहीं नकार रहे थे, लेकिन राजा की परीक्षा ले रहे थे, फिर राजा की नम्रता देखकर बड़े प्रभावी हो जाते हैं और फिर वो उनकी बात मानते हैं और राजा उनके इच्छा के अनुसार उनका घर बनाते हैं गंगा किनारे। और फिर जयदेव जी वहाँ पर रहते हैं, क्योंकि राजा इस बात से प्रभावित होता है कि जयदेव जी ने जो गीत लिखे हैं, कुछ लिख रहे थे, वो उनके हाथ में आते हैं और वो देखकर बड़े प्रभावित होते हैं। वो इतना सुंदर भजन मतलब काव्य लिखा है उन्होंने, तो आपके लिए बड़ी सुविधाजनक जगह होनी चाहिए, इसलिए वो उनको घर बना देते हैं। फिर जयदेव जी अपना काव्य लेखन आगे रखते हैं, जारी रखते हैं, और उन्होंने जो लिखा हुआ है उसका नाम है गीत गोविंद। और जो गीत गोविंद, आप में कोई गीत गोविंद माता जी भी है ना? हाँ, तो वो गीत गोविंद जयदेव गोस्वामी ने लिखा है। और अगर भगवद गीता बेसिक स्टडी है, श्रीमद् भागवतम पोस्ट ग्रेजुएट स्टडी है, चैतन्य चरितामृत PhD है, हाँ, तो गीत गोविंद क्या कह सकते हैं उसको, फोर्थ डिग्री PhD कह सकते हैं उसको, फोर्थ डिग्री डॉक्टरेट, बहुत ऊंचा विषय है वो। राधा और कृष्ण का संबंधों का बहुत उत्कट वर्णन उसके अंदर है, लीलाओं का। तो वो लिखना आरंभ करते हैं, लिखते जाते उनका रोज का सेवा, भगवान की सेवा करना मालाओं से और गीत लिखना। तो एक दिन ऐसा प्रसंग आता है उनके लेखन में, काव्य में, कि राधा रानी रूठ गई है और श्री कृष्ण भगवान उनको मना रहे हैं और वो मान नहीं रही है, फिर वो मना रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, फिर वो उनको मनाने के लिए अपना मोर मुकुट जो है वो उसके पैर पर रखते हैं। मतलब राजा कभी भी जब शरण आता है तो पहले मुकुट जो है वो अपने जिसको शरण आया उसके चरणों में रखता है। तो उस भाव से श्री कृष्ण भगवान अपना मोर मुकुट जो है वो राधा रानी के चरणों में रखते हैं, फिर भी वो नहीं मानती है, फिर वो अपना सर जो है उनके चरणों में झुकाते हैं। लेकिन ये बात उनसे लिखी नहीं जाती कि हाउ कैन आई राइट दिस, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड श्री कृष्णा अपना सर झुका रहे हैं राधा रानी के चरणों में, ये बात उनको लिखने में बड़ा संकोच होता है। तो वो लिखूं कि नहीं लिखूं भ्रम में पड़ जाते हैं, लेकिन छोड़ देते उसको, ये बाद में लिखेंगे उसको। और थोड़ा मंथन विचार करने के लिए वो ब्रेक लेते हैं और पत्नी से कहते हैं कि मैं ज़रा स्नान करके आता हूँ गंगा जी में जाकर। और जाते हैं गंगा जी में स्नान करने के लिए और कुछ ही मिनटों में वो वापस लौट के आते हैं। कहते हैं पद्मावती जी बड़ी भूख लग रही है, तो वो कहते ठीक है खाना लगाती हूँ, आज बहुत जल्दी लौट के आया, कोई बात नहीं, ठीक है। उतने में वो अंदर जाते हैं जहाँ पर अपना कमरा है लिखने का, वहाँ पर जाकर वो जो काव्य उन्होंने अधूरा छोड़ दिया था उसको पूरा कर देते हैं। और पूरा करके भोजन को बैठते हैं, पद्मावती जी उनको बड़े प्रेम से भोजन कराती हैं, बड़े प्रेम से भोजन करते हैं और फिर चले जाते हैं। जैसे चले जाते हैं कुछ क्षण में फिर लौट के आते हैं और कहते हैं पद्मावती मैं स्नान करके आया हूँ, भोजन लगाओ, भूख लग रही है। तो पद्मावती कहते हैं अरे अभी तो आके भोजन करके गए आप, तो क्या बात कर रही हो, मैं तो जब से गया तब से तो एक आध पौना घंटा तो लगता है मुझे स्नान करने के लिए। नहीं नहीं आप तुरंत जाके लौट के आए, गए तुरंत लौट के आए, ऊपर से अंदर गए आपने, आपका काव्य पूरा किया जो बचा हुआ था वो भी भोजन किया मेरे हाथ से, तो उनको विश्वास नहीं हुआ। तो अंदर गए देखा तो जो काव्य अधूरा छोड़ के गए थे उसको उन्होंने पूरा किया हुआ देखा, तब वो समझ गए कि स्वयं श्री कृष्ण भगवान उनके घर में आए और जो संकोच मुझे हो रहा था उसको पूरा करने में वो स्वयं उन्होंने पूरा किया। तो भाव विभोर हो गए, बेहोश हो गए, वो गिर गए, होश में आए, पद्मावती को बोले, पद्मावती तुम कितनी भाग्यवान हो, तुमने साक्षात श्री कृष्ण को आज भोजन कराया है, उनका दर्शन किया है, मैं नहीं आया, मेरा रूप लेकर भगवान आए आपके घर पे और आपको दर्शन दिया, बड़े भाग्यवान हो। फिर बेहोश हो गए, फिर पद्मावती बेहोश हो गई। तो ये सुंदर लीला चंपावती में हुई। जो काव्य का एक पंक्ति पूरा लिखने में संकोच हो रहा था जयदेव को, वो स्वयं भगवान ने, मतलब उनको लग रहा था कि ये सही है कि गलत है, जो मुझे अनुभूति हो रही है वो सही है कि गलत है, ऐसा लग रहा था उनको। लेकिन भगवान ने वो लिखकर जयदेव जी को ये अनुभूति दिलाई कि हाँ, मैं राधा रानी लूटने पर मेरा मोर मुकुट और मेरा सिर उनके चरणों में झुकाता हूँ, ये सत्य है। क्योंकि हमारे जो आचार्य हैं ना, संत लोग हैं, जितनी रचनाएं उन्होंने की है भगवान की लीलाओं की, वो भगवान का लीलाओं का दर्शन करते हुए उन्होंने लिखा है सब कुछ। ऐसा वो हमारे जो कवि होते हैं आजकल के, वो कल्पना करते हैं ना, कल्पना में कविता लिखते हैं, सत्य नहीं होता है वो। लेकिन आचार्य ने जो कविता किया है वो सब दर्शन करते हुए कविता लिखा है। जैसे सूरदास जी हैं, जैसे हमारे आचार्य हैं, उन्होंने सब लोगों ने दर्शन करते हुए उसको लिखा है, जो देखा वो लिखा। तो वैसे तो वो बैठे हुए हैं चंपावती गांव में, लेकिन ठाकुर जी के जिला का दर्शन कर रहे हैं वो, और वो जो देख रहे हैं उसको उतार रहे हैं, लेकिन वो उनको विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसे कैसे हो सकता है। तो भगवान ने स्वयं आकर वो काव्य पंक्ति पूरा करके ये एहसास दिलाया कि मैं निश्चित रूप से राधा रानी ने चरणों में अपने सर को झुकाता हूँ, वो मेरे लिए वंदनीय है। तो वो गीत गोविंद जो है, वो गीत गोविंद कृष्ण को बहुत बड़ा पसंद है, वो ही लाइक्स इट वेरी मच। और ऐसे कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने भी, उनका अवतार तो 15वीं सदी में हुआ ना, 1486 में, तो ये तो 8वीं सदी की बात चल रही है, फिर भी चैतन्य महाप्रभु ने अपने आने वाले अवतार का दर्शन जयदेव जी को दिया उधर ही, और उनको ये भी वरदान दिया कि आपका लिखा हुआ गीत गोविंद का आनंद मैं लूँगा जब मैं अवतार लूँगा। इसलिए महाप्रभु चैतन्य बड़े प्रेम से गीत गोविंद सुनते थे और उसका आस्वादन करते थे। यहाँ तक कि जब महाप्रभु चैतन्य ने रथ यात्रा किया और प्रताप रुद्र महाराज उनको मिलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन भगवान जानबूझ के उनकी परीक्षा के रूप में उनको मना कर रहे थे मिलने के लिए, नहीं मिलूँगा मैं, दोबारा आओगे तो मैं पूरी छोड़ के चला जाऊँगा, मैं राजा से मिलना नहीं चाहता। इस तरह से उनको टाल दिया उन्होंने कई बार। और सार्वभौम भट्टाचार्य उस कार्य में लगे थे कि प्रताप रुद्र महाराज को कृपा मिलनी चाहिए महाप्रभु की, कोशिश कर रहे थे, मौका ढूंढ रहे थे। तो रथ यात्रा समाप्त हुई और महाप्रभु थक गए, चैतन्य महाप्रभु, तो जगन्नाथ वल्लभ बगीचे में गए, वहाँ पर विश्राम कर रहे थे। उस समय सार्वभौम जी ने उनको बताया कि अभी एक सूती वस्त्र पहनकर आप चले जाओ, राजा बनकर न मत चले जाओ, ये सामान्य भक्त बनकर जाओ और महाप्रभु जी आराम कर रहे हैं तो उनको, उनके चरणों की सेवा करो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। तो राजा प्रताप रुद्र उस समय महाप्रभु जी के चरणों की सेवा करने लगे, मालिश करने लगे उनको। तो महाप्रभु जी आँखें बंद थी, तो सार्वभौम जी ने कहा कि आप गीत गोविंद गाओ। वही प्रताप रुद्र महाराज बचपन से भक्त थे, ऐसा नहीं कि वो राजा आने से भूल गए, बचपन से उन्होंने गीत गोविंद का पठन किया था, उनको तो मुखोद्गत था, वो याद था उनको। तो तुरंत उन्होंने मुख से गीत गोविंद गायन शुरू किया और हाथों से चरण को दबा रहे थे भगवान के। भगवान ने बड़ा आनंद लिया उसका। और जब उनका मसाज खत्म हुआ तो भगवान ने आंखें खोली और पूछा कि आप कौन हो, जैसे कि पता ही नहीं कौन है। तो उन्होंने कहा कि भक्तों का मैं दास हूँ, मैं वैष्णवों का दास हूँ, ये नहीं कहा कि महाराजा जिराज, हाँ प्रताप रुद्र महाराज हूँ, ऐसा नहीं बताया। उन्होंने कहा कि मैं भक्तों का दास हूँ। तो महाप्रभु बड़े प्रसन्न हो गए, उनको बड़े प्रेम से आलिंगन दिया उन्होंने और कृपा किया उनको, जिनको नकार रहे थे इतने दिन से। सार्वभौम भट्टाचार्य प्रयास कर रहे थे, उनको सफलता मिली, तो ये गीत गोविंद उन्होंने उस समय गाया। तो यही गीत गोविंद जो है वो जगन्नाथ भगवान को बड़ा प्रिय है, और जगन्नाथ भगवान रात को एक वेश धारण करते हैं, उसका नाम है बड़ो श्रृंगार वेश। वो रात को भाव उसका ऐसा है कि रात को उनको राधा रानी और गोपियाँ मिलने आती हैं, उस समय उनके मिलने के लिए वो बड़ो श्रृंगार वेश धारण करते हैं, और उसमें वो एक वस्त्र धारण करते हैं फेटे के रूप में सर पे अपने, वो रेशम का वस्त्र होता है, और उस वस्त्र पे उड़िया भाषा में संस्कृत गीत गोविंद के श्लोक छपे होते हैं, और वो जो गीत गोविंद छपे वो वस्त्र है उसको कहते हैं गीत गोविंद खंडुआ, और वो गीत गोविंद खंडुआ वस्त्र जो है वो जगन्नाथ भगवान रात को धारण करते हैं अपने सर पर, और कार्तिक महीने में वो बड़ श्रृंगार वेश गीत गोविंद खंडुआ धारण करके चंदन का भी लेप लगाते हैं अपने आप को, चंदन भी लगाते हैं, चंदन लागी बोलते हैं उसको, चंदन लागी। तो वो गीत गोविंद खंडुआ जो जगन्नाथ जी स्वयं नवकलेवरम ने पहना, वो आपके लिए महाप्रसाद के रूप में लाया मैंने। वो उसका ऐसा हुआ कि वो श्यामारानी माता जी की लड़की है सुंदरी सखी, वो भी हमारी यात्रा में थी, तो उनको कुछ सहेली थी, उन्होंने पूछा कि ये गीत गोविंद खंडुआ क्या होता है, तो वो मुझे पूछने आई प्रभु जी गीत गोविंद खंडुआ क्या होता है, तो जो भी मैंने आपको बताया वो उसको समझाया मैंने, तो उसने कहा कि प्रभु जी वो गीत गोविंद खंडुआ देखने को मिल सकता है क्या, तो मैंने कहा क्या मालूम अब कहने से पुजारी को पूछते हैं, तो हमारे जो पुरोहित थे वो असिस्टेंट पुरोहित थे, वो अलारनाथ में हमको उस समय लंच प्रसाद राजभोग अलारनाथ का परोस रहे थे सबको महाप्रसाद, तो हम उनके पास गए तो उन्होंने कहा कि हमने कहा ये कन्या पूछ रही है कि गीत गोविंद खंडुआ दर्शन कर सकते हैं क्या, तो तुरंत उनके गले में एक सुंदर चमकता हुआ वस्त्र था, गांठ मार के रखा था उन्होंने, तुरंत निकाल के दिया, बोलते यही गीत गोविंद खंडुआ आपके लिए लाया था मैंने, आपको देने के लिए आपको देख रहा था कि प्रसाद के बाद में आपको दे दूँ तो मैं इतना दंग रह गया वो सुनकर कि जो गले में लटका के रखा था चमकता हुआ वस्त्र वही गीत गोविंद खंडुआ है और वही मुझे देने के लिए लाए थे, वो तुरंत उतार के गले में पहना दिया मुझे उसको, तो वो वस्त्र मैं आपको सबको स्पर्श करने के लिए आया हूँ। नंबर वन। नंबर टू, इस साल आप जानते हैं सब लोग जगन्नाथ जी ने अपना शरीर बदला है ना, श्री जगन्नाथ जी 19 साल में एक बार जब अधिक महीना आषाढ़ का होता है तब अपना शरीर बदलते हैं, वैसे एक ही विग्रह हैं जो अपना शरीर बदलते हैं, बाकी सब तो पुरातन काल से वैसे रहते हैं, लुप्त तो हो जाते हैं फिर प्रकट होते हैं फिर लुप्त तो होते हैं प्रकट होते हैं, लेकिन है वही विग्रह होता है, श्रीनाथ जी है, राधा माधव है, राधा गोविंद जी है, राधा मदन मोहन जी है, एक ही विग्रह है उनके, वो कभी बदलते नहीं हैं, लेकिन जगन्नाथ जी जो है वो जब जिस साल में आषाढ़ महीना अधिक होता है उस साल में वसंत पंचमी के दिन उनका शरीर बदलने का कार्यक्रम शुरू होता है। कितने लोगों को कथा मालूम है उसकी, जगन्नाथ नवकलेवर की, नहीं लगता किसी को पता नहीं है। वो ऐसा है कि वहाँ पर एक मंगला देवी का मंदिर है जगन्नाथपुरी में, हाँ वो मंदिर में वसंत पंचमी के आसपास जगन्नाथ जी के जो प्रमुख पुरोहित है विद्यापति, वो अपनी कुछ असिस्टेंट पुजारी के साथ में उस मंदिर में जाकर रहते हैं, एक दिन दो दिन तीन दिन रहते हैं, और उनको फिर एक दिन स्वप्न आता है चीफ पुजारी को, और वो स्वप्न में वो चीफ पुजारी को मंगला देवी बताती है कि नए विग्रह के पेड़ कहाँ पर है, वो स्वप्न में दर्शन कराती है, वो स्वप्न आते ही फिर नेक्स्ट डे सुबह उन पुजारियों की पूजा होती है, खुद उनकी आरती पूजा करते हैं, उनको माला पहनाते हैं, उनको भेंट देते हैं, प्रसाद खिलाते हैं, फिर वो मंडली निकलती है और कई दिन तक जो स्वप्न में देखा है उसको ढूंढते हैं वो लोग, और फिर वो उस पेड़ के अंदर चार पेड़ उनको चाहिए होते हैं, एक चक्र का पेड़ होता है उसको चक्र दारू कहते हैं, दारू यानी लकड़ी, चक्र दारू, जगन्नाथ दारू, बल्लभ बलदेव दारू और सुभद्रा दारू, वो दारू ब्रह्म पेड़ को ढूंढते हैं वो, और उसके बहुत चिन्ह होते हैं, उसके साथ में नाग का बिल होना चाहिए कोबरा का, उसके पास तीन शाखा होनी चाहिए पेड़ की, पाड़ होना चाहिए, जलाशय होना चाहिए, ऐसे बहुत सारा नियम है उसके, वो सब कुछ मैच करना पड़ता है उनको। तो इस बार जो हमारे पुरोहित थे, जो हमारे यात्रा कराते हमको, वो पुरोहित को चीफ विद्यापति के रूप में नियत चयन किया गया। ही वॉज सिलेक्टेड एज चीफ विद्यापति। उनके बड़े भाई को स्वप्न आया और फिर वो 4 महीने ढूंढ रहे थे। उनको भुवनेश्वर में चक्र का पेड़ मिला, चक्र को बनाने के लिए जो पेड़ है। और जसवंत सिंहपुर नाम के डिस्ट्रिक्ट में उनको जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के 3 पेड़ मिले। जगन्नाथ जी के पेड़ पर चक्र का चिन्ह होता है, शंख का चिन्ह होता है। बलदेव के पेड़ पर गदा का चिन्ह होता है। ऐसे बहुत अद्भुत चीज़ें हैं सब वो। तो ढूंढ के निकालने के बाद वो सांप आते हैं उधर, फिर वो पेड़ों को पूजा करनी पड़ती है, भोग लगाना पड़ता है, यज्ञ होता है वहाँ पर, महाआरती होती है। उसके बाद में वो सोने की कुल्हाड़ी, चांदी की कुल्हाड़ी, लोहे की कुल्हाड़ी को टच करना पड़ता है, फिर एक्चुअल कुल्हाड़ी से काटना पड़ता है। फिर उसके बाद में उसको वस्त्र पहनाकर लकड़ी का रथ बनाकर जहाँ मिला है वहाँ से जगन्नाथपुरी तक रथ यात्रा करते लेके आते हैं और गांव-गांव में उनको भोग लगाते हैं, आरती पूजा होती है। ऐसा करते इस साल का जो पेड़ मिले थे वो 90 किलोमीटर दूर थे जगन्नाथपुरी से, और 90 किलोमीटर उनको लकड़ी के रथ पर बिठाकर चारों को लेकर जगन्नाथपुरी तक पहुँचे। फिर उसके बाद में उनको गुंडीचा मंदिर में रखते हैं महावेदी पर, और गुंडीचा मंदिर में चारों तरफ कीर्तन मंडली बिठाते हैं ताकि इतना आवाज़ हो जाए कि अंदर जो आवाज़ हो रही है वो आवाज़ किसी को सुना नहीं है, पड़ना चाहिए। फिर जब मूर्ति का नए विग्रह बनते हैं तो नए विग्रह एक दिन तय करते हैं, जैसे ज्येष्ठ पूर्णिमा का पहला दिन, फॉर एग्जांपल ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन उनका अवतार हुआ था, उनका प्रकट हुए थे वो भगवान इंद्रदुम्न राजा के लिए। तो ज्येष्ठ पूर्णिमा के आसपास आगे मुहूर्त निकाल के उस दिन रात को वो जगन्नाथपुरी में अंधेरा करते हैं। गौ माता जी राधे राधे, सुनिए मैं क्या कर रहा हूँ। तो रात को जगन्नाथपुरी में ऑफिशियली लाइट ऑफ कर देते हैं और महावेदी में बंद जगह पर पुराने विग्रह लेके आते हैं, पुराने जगन्नाथ के सामने नए जगन्नाथ को रखते हैं। पुराने सुभद्रा नए सुभद्रा, नए पुराने बलराम नए बलराम, पुराने चक्र नए चक्र। और पुजारी बंद अंधेरे कमरे में जाते हैं बीच रात में, अपने आँखें उनको बांधना बंद करना पड़ता है, ब्लाइंड फोल्ड, और हाथों को पूरा कपड़ा बांध देते हैं ताकि हाथों का किसी अंग को भगवान का स्पर्श नहीं होना चाहिए। पूरा अपने आप को बांध देते हैं, बैंडेज जैसे करते हैं, और फिर वैसी अवस्था में जगन्नाथ के नाभि के अंदर दरवाज़ा होता है, वो नाभि को खोलते हैं, उसके अंदर नाभि ब्रह्म होते हैं, जगन्नाथ का प्राण। और वो जगन्नाथ का प्राण कहते हैं कि उसका जो कपड़ा बांधने के बाद में जो फीलिंग होता है ना, फीलिंग, वो एक जिंदा खरगोश अगर आपके हाथ में रखा जाए तो कैसे आपको लगेगा, ऐसा फुल ऑफ एनर्जी। हाँ, वो वर्णन नहीं कर सकते उसका कैसा है, लेकिन वो कहते हैं कि ऐसा कुछ अनुभव होता है, क्योंकि हाथ तो बांधा हुआ ना पूरे कपड़ों से। तो वो जगन्नाथ जी के प्राण जो है वो पुराने जगन्नाथ से वो नए जगन्नाथ में ट्रांसफ़र कर देते हैं, उसको ब्रह्म पदार्थ कहते हैं, नाभि ब्रह्म, वो इनके शरीर से इनके शरीर में नाभि में अर्पण कर देते हैं। फिर सुभद्रा जी, फिर बलदेव जी, ऐसे उनका होता है। फिर जो पुराने जगन्नाथ जी के शरीर हैं जिनके अंदर नाभि ब्रह्म निकाल दिए गए हैं, फिर उनके पीछे जगन्नाथ जी के मंदिर में बड़ी जगह है, उसका नाम है कोयलो वैकुंठ, बहुत बड़ी जगह है कोयलो वैकुंठ, वहाँ पर ज़मीन में उनको दफना देते हैं, समाधि बोलते हैं उसको, जगन्नाथ समाधि लेते हैं। और फिर अगले दिन जगन्नाथ जी की प्रतिष्ठापना करते हैं, उसके लिए यज्ञ होता है। तो जगन्नाथ जी का प्रतिष्ठापना इस साल हुआ, हमारे पुरोहित के नेतृत्व में हुआ, वो यज्ञ हुआ। उस यज्ञ का जो भस्म है वो भी हम लाए हैं आपके लिए, राख होते ना यज्ञ की, वो लाए हैं। और जगन्नाथ जी ने वो वस्त्र पहना था जो, वो भी महावस्त्र आपके लिए लाया है। तो इस तरह से फिर जगन्नाथ जी जब ज्येष्ठ पूर्णिमा को उनका पूरा प्रतिष्ठापना होता है तो ज्येष्ठ पूर्णिमा को नरेंद्र सरोवर के किनारे उनको लेके जाते हैं और वहाँ पर पब्लिक में उनका अभिषेक करते हैं ठंडे पानी से, सूर्य उदय से लेकर सूर्य अस्त तक। और वो दिन भर ठंडे पानी से स्नान करने से फिर जगन्नाथ जी को बुखार आता है, तब वो दर्शन देना बंद करते हैं। 15 दिन का काल होता है जिसमें उसको कहते हैं अनवसर, अनवसर काल में जगन्नाथ जी दर्शन नहीं देते हैं। केवल पुजारी जो है वो अंदर अंदर से जाकर उनको कषाय काढ़ा जड़ी बूटी सब दवाई देते रहते हैं, और जगन्नाथ जी का शरीर बहुत गर्म रहता है उस समय, एक्चुअली गर्म रहता है, ऐसा कोई कहानी नहीं है, इसका अनुभव लोगों ने किया है। तो उस समय जब उनका बुखार बहुत तेज होता है तो उनको चंदन और कर्पूर के तेल से अभिषेक कराते हैं, और वो तेल जगन्नाथ जी का कैसा है, जगन्नाथ जी के जगन्नाथ की सेवा में 36 जाति के लोग उनकी सेवा करते हैं, और हर एक जाति की एक फिक्स सेवा है जो पीढ़ी पीढ़ी जात से वो लोग करते रहते हैं, उनके बच्चे उनके उसी परिवार में वो सेवा चलती है। और जगन्नाथ जी एक ऐसे अनोखे भगवान हैं कि एक ब्राह्मण जाति को छोड़कर 35 अन्य जाति से भी वो सेवा लेते हैं। एक जाति केवल ब्राह्मण की होती है, विद्यापति, बाकी सारी जाति जो है वो बिन ब्राह्मण की जाति होती है। शूद्र भी उसके अंदर आते हैं, दायित, शबर, इस सब प्रकार के जातियाँ जो हैं उनको विशिष्ट सेवा दी गई है। फॉर एग्जाम्पल रथ बनाने की सेवा जो है वो एक ही जाति करते हैं, हर साल में एक बार सेवा आती है रथ बनाने की सेवा। और आप में से कितने लोगों को पता है कि रथ बनाने के लिए 600 विशिष्ट प्रकार के पेड़ की आवश्यकता होती है। 1996 में जब प्रभुपाद जी का जन्म का शताब्दी हुआ, 100 साल पूरे हो गए, उस साल में इस्कॉन भुवनेश्वर ने ब्रिटिश संस्था के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके, गवर्नमेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके एक 150 एकड़ का जगह गवर्नमेंट से ले लिया जंगल में, और ये गवर्नमेंट को वादा किया कि हम ऐसा प्लानिंग करेंगे कि हर साल रथ यात्रा में रथ बनाने के लिए 600 पेड़ हम आपको देंगे। उसके लिए कुछ हजारों पेड़ लगा के रखे हैं उधर, इस गणित के कि हर साल 600 पेड़ काटने के लिए मिलने चाहिए, और वो 600 पेड़ काट कर वो जगन्नाथपुरी भेज देते हैं, और फिर अक्षय तृतीया को वो रथ बनाना शुरू कर देते हैं, और 3 महीने में रथ बांधते हैं उसका। जय जगन्नाथ, बलदेव सुभद्रा माई की जय। तो वो सेवा एक परिवार करता है। रथ को भगवान को बिठाकर बाद में गुंडीचा पहुंचाते हैं। गुंडीचा में एक और जाति उनकी सेवा करती है ब्रज भाव में, उसको गुप्त वृंदावन कहा गया है। ऐसे कहते हैं कि जितनी सेवाएं हैं वो एक के ऊपर एक निर्भर है। मतलब अगर समझो आपने सेवा एक नहीं किया तो अगली सेवा मैं नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल पुजारी बता रहे थे कि समझो आपकी सेवा फूल बिनकर लाने की है, जब तक फूल बिनकर आप लेके नहीं आएंगे मैं फूल आपसे लिए बिना आगे की सेवा नहीं कर सकता। दे आर ऑल इंटरडिपेंडेंट, दे हैव टू, एवरीबडी हैज़ टू डू देयर सेवा, देन ओनली द नेक्स्ट पर्सन कैन डू सेवा। तब जाकर विद्यापति जी अपने आगे की सेवा कर सकते हैं। जो भगवान को नहलाते हैं वो भी विशेष लोग सेवा करते हैं उनकी, वो आईना रखते हैं भगवान के सामने, ऐसे भगवान खड़े हैं ऐसे, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा नीचे आईना रखते हैं और आईने में भगवान का मुख देखते हैं, ऐसा बैठते हैं जैसे कि वो आईने में आपको भगवान का मुख देखेगा। फिर उनको दातून कराते हैं, उनको मुँह धोते हैं, उनको भोजन कराते हैं, वो आईने को स्नान कराते हैं, अभिषेक कराते हैं, फिर जाकर उनका वस्त्र बदले करते हैं, सेवा करते हैं उनकी। तो जब भगवान को बहुत तेज़ बुखार आता है तो एक जाति के लोग जो है वो एक साल पुराना चंदन और कर्पूर का तेल जो है उसको ज़मीन के अंदर रखते हैं एक साल, और इस साल पिछले साल का तेल जो बनाया हुआ है, जो एक साल ज़मीन के अंदर रखा है, उसको निकाल कर बड़े वाद्य वृंद संगीत के साथ में निकाल कर उसको मंदिर पहुँचाते हैं जब भगवान का बुखार तेज होता है, और फिर वो तेल से भगवान को स्नान कराते हैं, फिर भगवान का बुखार कम हो जाता है। वो तेल का महाप्रसाद भी हमने लाया है आपके लिए। जय जगन्नाथ, हरे कृष्णा। तो ऐसे बड़े बिना कुछ योग्यता के ऐसे बहुत सारी कृपा प्राप्त हो गई इस साल। तो आप लोग जगन्नाथ की सेवा करते हैं, ये हमारा भाग्य है कि आपको भी वो स्पर्श होना होगा। और जब वो जगन्नाथ जी का नाभि ब्रह्म को ट्रांसफ़र करते हैं तो वो जगह पर वो एक चंदन का गोला, बहुत सारी तुलसी और बहुत सारे सुगंधित फूल रखते हैं। और जब उस जगन्नाथ का समय आता है नाभि ब्रह्म ट्रांसफ़र करने का, तो वो चंदन तुलसी और फूल जो है ना वो वैसे के वैसे ही ताज़े रहते हैं जैसे रखे गए थे, 19 साल के जैसे रखे गए थे फ्रेश, वैसे के वैसे ही रहते हैं। तो उसको बाहर निकाल कर वो प्रसाद के रूप में लोगों को बांटते हैं। तो उनके नाभि के अंदर की जो तुलसी और चंदन है वो भी हमको प्राप्त हुआ है, उसका भी आप दर्शन कर सकते हैं, बहुत कम मात्रा में है, आप उसको दर्शन कीजिए, प्रणाम कीजिए उनको। तो ये बहुत असीम कृपा है भगवान की। हाँ, मैं जब 2009 की यात्रा में गया था जगन्नाथपुरी यात्रा में पहली बार, भक्ति वेदांत अस्पताल से, तो तभी भी मुझे 1999 का जो नवकलेवरम हुआ था उसका चंदन तुलसी प्राप्त हुआ था और वो तेल भी प्राप्त हुआ था, उसमें 10 साल के बाद प्राप्त हुआ था, इस बार उसी साल प्राप्त हो गया। तो आप लोग जगन्नाथ की सेवा करते हो, मेरा ये विश्वास है कि निश्चित रूप में ये चीज़ आप तक पहुंच रही है, इसका मतलब जगन्नाथ की आपकी सेवा से प्रसन्न है। इसलिए जगन्नाथ जी ने, आपने कहा ना कि क्या मिला, क्या मिला सेवा करके, क्या मिला, कुछ तो नहीं मिलता है। तो जगन्नाथ जी ने उनकी सेवा जो आपने की है उसमें प्रसन्न हो गए हैं, इसके प्रूफ में उन्होंने आपको ये प्रतिसाद दिया है। मैंने कई कथा आपको पहले भी बताई होगी, शायद कुछ लोग नए हैं इसके अंदर, इसलिए मैं दोबारा कथा बताऊंगा। मैं 1988 में ऋषिकेश में था, गुरुदेव ने मुझे वहाँ भेजा था, तो वहाँ पर जगन्नाथ जी का ही विग्रह था, जगन्नाथ जी बलदेव सुभद्रा, जगन्नाथ जी थे या गौर निताई थे, जगन्नाथ जी थे शायद, एनीवेज। तो मैं उनकी रोज़ सवेरे श्रृंगार करता था और वो बड़ा कठिन उनका टाइम टेबल था। 3 बजे के बाद में मंदिर का कोई व्यक्ति अगर मंदिर में प्रवेश करेगा तो वो उसको लेट मार्क देते, लेट मार्क। दोपहर का 3 की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, सुबह के 3 की बात कर रहा हूँ 3 AM। तो सब भक्त लोग 1:30, 2, 2:30 बजे उठते थे और 3 बजे लास्ट एंट्री करते थे। उसके बाद में अगर आप लेट जाएंगे तो उसका पेनल्टी भी मिलता था, कुछ शिक्षा मिलती थी, मतलब पेनल्टी यानी दंड मिलता था उसका। और सब भक्त लोग मिलकर 3 से 4:30 तक अपना 16 माला पूरी करते थे और 4:30 को मंगला आरती करने के बाद में 5:15 के बाद में सब अपने अपने सेवा में चले जाते थे, मंदिर खाली पूरा, यहाँ पर जब करते वहाँ पर मंदिर खाली होता था उस समय, सबका जब पूरा और सब लोग अपने अपने सेवा में लगता थे 5:15 को ही, और केवल मंदिर में एक ही व्यक्ति है जो पुजारी है, वो जगन्नाथ भगवान का श्रृंगार कर रहे हैं। तो वो मैं करता था सेवा। मुझे एक दिन ऐसे विचार आया मन में कि क्या मेरी सेवा भगवान स्वीकार कर रहे हैं क्या, इतना दिन से कर रहा हूँ, कैसे मालूम कि वो स्वीकार कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो मैंने एक दिन, फिर वो दिन उनका श्रृंगार करते करते ऐसे मन में बोला कि अगर आप मेरी सेवा स्वीकार कर रहे हो तो आज श्रृंगार करने के बाद जब आरती होगी, श्रृंगार दर्शन होगा और प्रसाद में लोग बैठेंगे, तब कोई ना कोई एक भक्त बोलना चाहिए कि श्रृंगार बहुत बढ़िया हो गया आज, तो मैं समझ जाऊँगा कि आपने मेरी स्वीकार की है। तो वो हम लोग ब्रेकफास्ट भी सर्व करते थे 7:30 को, तो मैं बड़ी उम्मीद में था कोई बोलेगा कोई बोलेगा कोई बोलेगा। पूरा प्रसाद सेवा मैंने सबको किया, दोबारा सेवा भी किया, कोई नहीं बोला। तो मैंने कहा कि भगवान सेवा स्वीकार नहीं कर रहे मेरी। लेकिन लास्ट में जो महाराज वहाँ पर थे, रेसिडेंट महाराज, उन्होंने कहा आज ठाकुर जी बड़े अच्छे दिख रहे हैं, जय जगन्नाथ। लेकिन मुझे लगा कि ये बाय फ्लूक बाय चांस भी हो सकता है। तो अगले दिन में कहा कि अगर ये सही में सत्य है कि आप मैं स्वीकार कर रहे हो तो एक बार और आज कोई बोलना चाहिए। अब ऐसा करना अच्छा नहीं है एक्चुअली, लेकिन फिर भी मैंने किया। उस दिन भी एंड तक कोई बोला नहीं और फिर भी कोई और एक भक्त बोला कि बहुत श्रृंगार अच्छा हो गया आज। उसके बाद मैंने कभी भी ये वापस नहीं किया क्योंकि मुझे विश्वास हो गया कि भगवान स्वीकार कर रहे हैं। उसी तरह से जगन्नाथ जी के मूल जो जगन्नाथपुरी में विग्रह है ना, बहुत पुरानी साल कथा है ये, वो मूल जगन्नाथ जी के विग्रह के जगन्नाथ के वंशज अलग होते हैं सेवा करने वाले। सुभद्रा जी का परिवार अलग होता है, बलदेव जी का परिवार भी अलग होता है, वो परिवार के लोग उनकी सेवा करते हैं, खाली बलदेव जी करते हैं, सुभद्रा के सुभद्रा लोग वही करते हैं लोग। इतना बहुत सुंदर ट्रेडिशन है उनका। उस जगन्नाथ के मंदिर के अंदर एक नरसिंहदेव का मंदिर है जहाँ पर चैतन्य महाप्रभु ने आकर नरसिंह आरती गाई थी, उसकी भी सेवा करने वाले परिवार एक फिक्स है, वही करते हैं उसकी सेवा। इतना महा सुंदर, इतना वातावरण है। तो वही जगन्नाथ जी का जो पुजारी था, उसने पूरा जन्म भर, जब से उसका उपनयन संस्कार हुआ तब से उसका सेवा शुरू हुआ, मोस्टली 8 ईयर्स के एज में हुआ, तो वो 80 साल का हो गया। इतना साल जगन्नाथ जी का पर्सनल सेवा किया उसने। एक दिन उसके मन में ऐसा विचार आया कि अरे जगन्नाथ जी मेरी सेवा स्वीकार कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कैसे मालूम पड़ेगा मुझे? मन में एक प्रश्न आया उसके। तो जगन्नाथ जी को उसने बताया कि अभी मैं बुढ़ा हो रहा हूँ, कभी भी मर सकता हूँ, तो मुझे पता करना है कि आप मेरी सेवा स्वीकार कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। तो मुझे अगर आप मेरी सेवा स्वीकार कर रहे हो और करते आ रहे हो इतने साल से, तो आज के दिन में मुझे कोई चमत्कारिक घटना दिखनी चाहिए, समथिंग मिरेकुलस, समथिंग अद्भुत आज होना चाहिए। कि सुबह की अर्ली मॉर्निंग ने उसने बताया भगवान को, और दिन भर वो वेट करता रहा कि कुछ अद्भुत चीज़, कुछ अद्भुत चीज़ नहीं, रोज का ही चीज़, कुछ नया चीज़ दिखाई नहीं पड़ रहा है उसको। सारी वही जगन्नाथ जी कैसा होता ना, वो पुजारी बता रहे थे मुझे कि जगन्नाथ जी का कोई फिक्स टाइमिंग नहीं होता है। आप बोलेंगे आज प्रसाद कब बाहर आएगा, तो बोले आज पूछता हूँ मैं क्या शेड्यूल है, आज क्या क्या पूजा होने वाली है, ऐसा नथिंग इज़ फिक्स्ड। उसका सिक्वेंस भी फिक्स नहीं होता है कि किसके बाद क्या करना है, वो एकदम स्पॉन्टेनियस साख्य भाव में सेवा करते हो। जब भी मैंने पूछा कि आज क्या होगा, तो बोले पूछ के बताता हूँ, फिर आके बोलते कि आज 3 बजे प्रसाद बाहर निकलेगा, ऐसा होता है उनका। अलग अलग आरती होती है, बहुत लंबी लंबी नाम है उसके, वो एक के बाद करते रहते हैं। रात को 1:30 बजे तक जगन्नाथ जी की आरती पूजा होती रहती है, और 1:30 से 3 बंद होता है, तो 3 बजे मंगला आरती होती है। जगन्नाथ केवल 1.5 घंटा शयन करते हैं, पूरा दिन पैक रहता है उनका एकदम, दिन भर कुछ ना कुछ चलते रहते हैं, और बीच में बंद होता है कुछ के लिए, लेकिन केवल भोग के लिए बंद, सोने के लिए बंद नहीं होता है, दिन भर सेवा चलती रहती है। ये जो हमारे पुजारी जो है, हमारे पुरोहित जो है, उनके बड़े भाई जगन्नाथ की सेवा करते हैं, मतलब दिन भर मंदिर में रहते हो, नो लाइफ फॉर हिम, इज गृहस्थ बट इज नो लाइफ, फुल टाइम उधर रहते हो, आनंद में रहते हैं, मस्त रहते हैं, उनको कोई दुनिया से कोई कनेक्शन ही नहीं उनका। तो वैसे वो सुबह से उनका कोई दिन भर वेट करते हैं वो, और रात को शयन का समय आता है। रात की भी सेवा अलग होती है, लेकिन दर्शन का एक समय होता है, लोग फिर लास्ट दर्शन में आते हैं और चले जाते हैं, बाद में फिर वो अंदर का बड़ो श्रृंगार वेश वो करते रहते हो। तो शयन आरती में भी वो बैठ गए पुजारी, कुछ चमत्कार तो नहीं हो रहा है, अद्भुत क्या दर्शन होगा, देख रहे हैं, सब सुन रहे हैं ना आप लोग, सब सुन रहे हैं ना। आपने जगन्नाथपुर देखा होगा, वो दो डंडी पकड़ते ना पुजारी, दो डंडी पकड़ते हैं हाथ में, सबके सर में वो डंडी लात लगाते रहते हैं, ऐसे ऐसे जब जाएंगे सबको ऐसे मर पैसा लेते हैं हा? तो वो भी डंडी लेके बैठे थे, सब कुछ स्पर्श कर रहे हैं, और सब लोग जाने लगे। अभी मंदिर अभी अंदर की सेवा शुरू होगी, सब लोग चले जाएंगे तो भी कुछ नहीं दिख रहा है उनको, तो बड़ा दुख हो गया उनको, अरे इतना जीवन भर मैंने सेवा किया, जगन्नाथ ने शायद स्वीकार ही नहीं किया उसको, पूरा जीवन व्यर्थ हो गया मेरा। उतने में एक लंबा चौड़ा आदमी आया उधर, आम आदमी से ऑलमोस्ट दुगना लंबा, आम आदमी का हाइट कितना, 6 फीट होता है ना अब आज के ज़माने में, आज के तारीख में, वैसा चंबा चौड़ा आदमी, सब काले रंग का आदमी था वो। उसने बड़ा ऊपर मुकुट पहना था, राजवस्त्र पहने थे, अलंकार पहना था, और वो पब्लिक के लाइन में ऐसा आया, दर्शन किया भगवान का उसने, और उसको भी सर पे लगाया ऐसे, तो उसको देखकर ये पुजारी चौंक गया एकदम कि ये तो आदमी अलग दिखता है कुछ, तो उसको देखते रहे वो दूर से, तो बड़े भाव से वो राजा प्रणाम कर रहे हैं भगवान को, और उनको लगा कि ये तो कभी मैंने जगन्नाथपुरी देखा नहीं आज तक आदमी, ये तो पहली बार देखा आज इतने साल में, कभी भी नहीं आता। तो वो आदमी बहुत देर प्रणाम करता रहा, पूजा करता रहा, प्रार्थना करता रहा, और फिर वो जाने लगा, तो ये उसके पीछे पीछे जाने लगे। तो वो जा रहा है इसके पीछे जा रहे हैं, मुड़ के देख रहा है पुजारी आ रहा है, फिर जा रहे आगे, फिर मुड़ के देख रहे हैं, बाद में पुकारते हैं, महाराज आप कौन हो? बोलते कोई, मैं तो दर्शनार्थी हूँ, दर्शन लेने को आया हूँ। नहीं नहीं महाराज आप छुपा रहे हो, बताओ कौन हो आप? नहीं नहीं मैं कोई नहीं हूँ, मैं तो रोज आता हूँ। नहीं नहीं मैंने आपको कभी देखा नहीं आज तक, आपको बताना ही होगा आप कौन हो। चरणों में गिर जाते हैं उसके। तो फिर वो जो व्यक्ति है वो यहाँ वहाँ देखता है बहुत देर तक, जब कोई नहीं होता है तो फिर बोलता है कि मैं महाराज विभीषण हूँ, मैं रोज लंका से यहाँ पर संध्या आरती का दर्शन करने आता हूँ। तो वो चरणों में गिर गए उसके, अरे जगन्नाथ ने मेरा सेवा स्वीकार किया, इसका मतलब जगन्नाथ ने आज मुझे अद्भुत चीज़ दिखा दी। तो वो उनके चरणों में गिर गए महाराज विभीषण के, वो कहा कि आप आए हो कि मुझे, मतलब उसका आनंद तो दूसरा था ना, एक तो विभीषण को देखा, उसका आनंद था। दूसरा आनंद क्या था, जगन्नाथ ने मेरी सेवा स्वीकार की है। इतनी बड़ी खुशी की बात है कि जगन्नाथ, आज तक मेरे मन में प्रश्न था, रोज प्रश्न मन में था, आज मैंने भगवान से मांग लिया तो भगवान ने मुझे ये दिखाकर साबित कर दिया कि मैं आपकी सेवा स्वीकार कर रहा हूँ। और साथ में महाराज विभीषण जैसे महान संत का भी दर्शन हो रहा है, तो उसके रोमांच खड़े हो गए। उसने कहा, महाराज मुझे कुछ ऐसा चिन्ह दीजिए जिसकी वजह से मैं आपको याद कर सकूं कि आपके मेरी भेंट हुई थी। तो अपने हाथ का एक कड़ा जो है ना, वो निकाल के उसको देते हैं और फिर वो आके अपने घर पे रखते हैं। वो कड़ा जो है विभीषण का, वो आज भी जगन्नाथपुरी में है, लेकिन उसका दर्शन किसी को करने का परमिशन नहीं है। वो जगह जो मंदिर बना के रखा है वो परमानेंटली बंद है। हमने उसका ढूंढ के निकाला था उसको, लेकिन वहाँ पर एंट्री नहीं किसी को। लेकिन वो कड़ा जो है वो आज भी जगन्नाथपुरी में है, जहाँ पर वो पुजारी ने मरते दम तक उस कड़े की पूजा की थी विभीषण के। तो कहने का तात्पर्य है क्या है, चाहे वो आप लोग हो, चाहे वो मैं हूँ ऋषिकेश में, चाहे वो चीफ पुजारी हो, जगन्नाथ जी आपकी सेवा स्वीकार कर रहे हैं, ये इसका प्रूफ है। नहीं ये तो ये चीज़ आपके तक पहुँचती नहीं थी, मुझे प्राप्त नहीं होती थी, आप तक पहुँचती नहीं थी। एक जगन्नाथ जी को आपको ये जो प्राप्ति है ना, ये बड़ी अद्भुत प्राप्ति है। हाँ, चाहे आपको यहाँ प्रवेश नहीं मिले, वहाँ प्रवेश नहीं मिले, नो प्रॉब्लम। अगर जगन्नाथ जी को, जगन्नाथ जी आपको अपना विशेष महाप्रसाद भेज रहे हैं आपके आपके तब, इससे बड़ी, इससे बड़ा प्रतिसाद, इससे बड़ा रिस्पॉन्स, इससे बड़ा अवार्ड पारितोषिक और कुछ नहीं हो सकता है। और आगे भी भेजेंगे, आगे भी नवकले होगा, हम जीवित रहेंगे तब आगे भी मिलेगा। हाँ, तो ये संपर्क प्राप्त होना भी एक बड़ी अद्भुत बात है। ये पुजारी का परिचय कैसे हुआ था, हमारे एक हॉस्पिटल में एक मित्र है हमारे, गुरु भाई, सर्वज्ञ कृष्ण नाम है उनका। वो ऐसे ही जगन्नाथपुरी घूमने चले गए थे, थोड़े परेशान थे उस समय किसी पर बात से, तो मंदिर में ऐसे ही खड़े थे वो। तभी ये पुरोहित, नए नए पुरोहित बने थे, तो उन्होंने जब ऐसे ही परिचय किया कि आप कौन हो, कहाँ से आए हो, तो उन्होंने कहा हम भक्ति विधान हॉस्पिटल से मुंबई से आए हैं, आपको जगन्नाथपुरी का मंदिर देखना, दर्शन करना है, हम कराते हैं आपको। ऐसे बुला के लेके गए, वो पूरा मंदिर का अंदर गर्भगृह में लेके दर्शन कराया, उनको महाप्रसाद दिलाया। बोलते अगली बार कभी भी आएंगे हमको कांटेक्ट करना, हमारे घर पे रहना, हमारे घर में प्रसाद खाना और जगन्नाथ जी का दर्शन करना और आनंद से चले जाना, कभी भी फोन करना। तो वो पुजारी फिर जब हमने यात्रा निकाली तो हमसे भी उनका परिचय हुआ उनके माध्यम से। और अभी क्या बोल रहे हैं, अभी अगली बार अकेले आना तो कहते हैं कि जगन्नाथपुरी के मंदिर के अंदर एक शंख है, वो शंख जो है वो कान पे लगाएंगे ना तो विष्णु सहस्त्रनाम सुनाई पड़ता है पूरा। हाँ, सुनाई पड़ता है। बोले आप अकेले आना, मेरे घर पे रुकना, फिर मैं आपको टाइम बताऊंगा, उसमें आपको लेके जाऊंगा और वो शंख आपको अंदर जाके कान पे लगाऊंगा। उन्होंने बहुत बहुत जानकारी दी मुझे इस समय। वो कहते हैं कि जगन्नाथ जी के दो चार ऐसे विग्रह हैं जो उनके उत्सव मूर्ति हैं, और अलग अलग समय पर अलग अलग उत्सव मूर्ति बाहर जाते हैं अलग अलग उत्सव मनाने के लिए। प्रमुख उनका जो विग्रह है उत्सव मूर्ति, वो है मदन मोहन जी। वो पूरे ऐसे विग्रह हैं, वो ऐसे खड़े हैं बिल्कुल बांसुरी लेकर खड़े हैं। लेकिन वो कहते हैं कि वो केवल मदन मोहन जी नहीं है, उसके अंदर चार विग्रह छुपे हुए हैं, वो किसी को पता नहीं, बोलते हो। वो जो तिलक है उनका, वो राम जी का है, तो तिलक के रूप में राम विराजमान है उसके अंदर। उनकी जो आंखें हैं उसको लाल पेंट किया गया, वो जगन्नाथ जी की आंखें हैं। उनका जो मुख है वो इतना बड़ा है, वो नरसिंह भगवान का मुख है। उनके हाथ में मुरली है, वो कृष्ण भगवान की मुरली है। तो श्री कृष्ण, नरसिंह, जगन्नाथ और राम, ये चारों विष्णु अवतार जो हैं वो उस मूर्ति में विराजमान हैं। और वो मूर्ति जाती है बाहर नौका विहार करने के लिए। जब अक्षय तृतीया आती है ना, तो 21 दिन तक वैशाख मास में भगवान जाते हैं नरेंद्र सरोवर, और नौका विहार का उत्सव 21 दिन मनाया जाता है चंदन उत्सव के साथ में। ऐसे अद्भुत बातें हैं वहाँ पर सब। और रोज़ एक एक श्लोक भेजते हैं व्हाट्सएप पर, उसका अर्थ बताते हैं, स्कंद पुराण में, पद्म पुराण में क्या क्या लिखा है। बलभद्र का मंत्र भेजते हैं, सुभद्रा जी का मंत्र भेजते हैं, और अद्भुत फोटो भेजते हैं वहाँ से। तो उसके लिए हमने क्या तपस्या किया है, कुछ तपस्या नहीं किया है, तो रेडीमेड कृपा प्राप्त हो रही है। तो इसलिए हमको ऋणी रहना चाहिए, हमेशा कृतज्ञ रहना चाहिए। जब सबसे हमारे जीवन में जब कष्ट होता है ना हमको, तो समस्या आ गई, परेशानी हो गई है, तो हमको इस कृपा की याद करना चाहिए कि देखो जब कष्ट हुआ तो भगवान को पूछते हैं क्यों भगवान, क्यों हमारे लिए क्यों हो रहा है, और जब सुख प्राप्त होता तो पूछते नहीं मैं क्यों, मुझे क्यों दिया आपने, ऐसा पूछते क्या कि भगवान आप इतना बड़ा वस्त्र मेरे को क्यों भेज रहे हैं, मेरी क्या योग्यता है, मत भेजो मेरे लिए, मैं अयोग्य हूँ इसके लिए, तुरंत ले लेते हम लोग। दुख आता है तो पूछते हैं मैं क्यों, मुझे क्यों दे रहे हैं। इसकी एक बहुत भौतिक जगत में कथा है, मुझे याद आती है, वो क्या नाम उसका भूल गया, वो वर्ल्ड चैंपियन था वो टेनिस में, उसने कई बार खिताब जीता वर्ल्ड का, बड़े फेमस था वो वर्ल्ड में, अभी वो जीवित नहीं है, लेकिन एंड में उसको कैंसर हो गया, जानलेवा कैंसर हो गया। तो उसका इंटरव्यू लिया गया कि हाउ डू यू फील नाउ, तो उसने बोला आपको ऐसा लगता है क्या कि आपको ही क्यों हुआ कैंसर, आपको क्यों हुआ। तो उन्होंने कहा जब मैं इतनी बार वर्ल्ड का खिताब जीता तब मैंने ये नहीं पूछा कि वाई मी ओनली, तो इसलिए अभी क्यों पूछूं भगवान को वाई मी ओनली, जब इतनी खुशियां प्राप्त हुई तब मैंने पूछा नहीं कि मैं क्यों हूं, मुझे क्यों दिया गया सब कुछ, तो दुख में क्यों पूछूं मैं, जो दे रहे हैं वो जानते हैं क्या देना है मुझे, जब उन्हें खुशियां दिया तब मैंने पूछा नहीं, तो मुझे इसमें भी पूछना नहीं चाहिए कि वाई मी ओनली। हमारा भी ऐसा ही होना चाहिए, आज ये मिल रहा है हमको, मुझे जब मिला तो मैंने पूछा नहीं वाई मी ओनली। इसलिए सबको देना चाहिए नंबर वन। हाँ, और खास करके आपके जीवन में जब दुख आएगा तब इन चीज़ों को याद करना चाहिए कि बिना योग्यता होते भगवान ने हमको इतना कृपा भेजा, इतनी दूर से भगवान कितने पर्सनल है। देखो आप कहाँ सेवा कर रहे हो, वो कहाँ बैठे हैं, लेकिन उनके वगैरह की यहाँ पर आप सेवा कर रहे हो, तो भगवान आपको एक रिस्पॉन्स भेज रहे हैं कि मैं हूँ और मैं आपकी सेवा स्वीकार कर रहा हूँ, डोंट वरी, आप श्रद्धा से और प्रेम से मेरी सेवा करते रहना, मैं आपको हमेशा आपकी सेवा स्वीकार करते रहूँगा, और जब समय आएगा तो आपको मैं उसका प्रमाण भेजते रहूँगा कि मैं आपकी सेवा स्वीकार कर रहा हूँ। ये पूरा जो प्रक्रिया है ना भक्ति का, बहुत पर्सनल है, वेरी पर्सनल, इसमें कोई थियोरेटिकल बात नहीं है कि बताया गया वैसे करना है। आपका भाव जैसे होगा वैसे आपको भगवान प्रतिसाद देते रहेंगे, अगर आप ठीक से भगवान को रोज देखेंगे तो आपको रोज भगवान अलग देखेंगे, कभी थोड़े रूठे हुए नजर आएंगे, कभी खुश नजर आएंगे, कभी थोड़े से सहमे सहमे नजर आएंगे, कभी हंसते हुए देखेंगे, कभी नाराज दिखेंगे आपको। आप अगर उनको देखेंगे गौर से तो वो आपको दर्शन देंगे रोज, क्योंकि हम भी रोज सेम दिखते नहीं हैं। तो वो भी रोज डिफरेंट दिखते हैं, लेकिन उनको आपको देखना नहीं चाहिए, उनको निहारना चाहिए। डोंट सी हिम, बिहोल्ड हिज ब्यूटी। सो गौर से देखो, उनके हर एक अंग को देखो। राधा वल्लभ जी के हमारे गोस्वामी हैं, वो कहते हैं कि भगवान को इतना सुंदर श्रृंगार क्यों करते हैं रोज, कभी नीला कभी पीला, कभी ये वस्त्र कभी उसका फेटा अलग, कोई पॉइंट अलग, ये कोई पीस अलग लगाते हैं, अलग अलग रोज रोज दहना करते हैं, क्यों करते हैं इतना श्रृंगार क्यों करते हैं, पैर में तो इतने घुंघरू बांधते हैं, इतने अंगूठी लगाते हैं उनको अलग अलग रोज की, क्योंकि अगर कोई एक गहना आपको पसंद आया, समझो अच्छा लगा आपको, अरे क्या भगवान का आज हरे कृष्णा, कोई आपको कोई गहना अच्छा लगा भगवान को, वो भगवान का गहना जो आपने भगवान के अंग पे देखा, वो अगर घर जाकर आपको याद आया ना तो आपका दर्शन सफल हो गया। इसलिए पहनाते हैं उसको, इतनी सुंदर चीज़ें क्यों पहनाते हैं कि किसी चीज़ में आपका दिल अटक जाए, अच्छा लगे कोई चीज़ आपको, बस जाए मन में आपके, और उस चीज़ की आपको घर में जाके याद आया ना तो आपका दर्शन सफल हो गया। और कहते हैं कि वो जब भगवान अलंकार धारण करते हैं तो अलंकार की शोभा बढ़ती है, भगवान की शोभा नहीं बढ़ती है, भगवान स्वयं परिपूर्ण है अपने आप में, कोई अलंकार की जरूरत नहीं उनको, लेकिन अलंकार की शोभा बढ़ाने के लिए वो अलंकार धारण करते हैं। वो अलंकार से बीच में से जब उनका अंग दिखाई पड़ता है तो उनका अंग जो है वो अलंकार से अधिक सुशोभित होता है, तेज से भरा होता है, वो के कपड़े के बीच में समझो कोई आपको दिखाई दिया, एक चौकोन दिखाई दिया शरीर के उनका, समझो कुछ पेट दिखाई पड़ा थोड़ा सा, कोई हाथ दिखाई पड़ा, थोड़ा सा उंगली दिखाई पड़ी, वो अंग उनका जो है वो उनके अलंकार से अधिक पावरफुल होता है और तेज से भरा होता है। इसलिए भगवान को पैर से लेकर ऊपर तक बड़े प्रेम से निहारना चाहिए कि क्या क्या पहना है उन्होंने आज, और याद करने का प्रयास करना चाहिए, चिंतन करने का प्रयास करना चाहिए। कभी कभी देख रहे हैं, आंखें बंद करो फिर खोलो, फिर देखो फिर बंद करो फिर खोल के देखो, क्या उनकी छवि इस पटल पर बस गई क्या? ये देखो फिर खोल के देखो फिर भी बंद करो, फिर खोल के देखो फिर बंद करो, बंद करके याद आया पूरा तो ओके, फिर घर जाके फिर वापस याद करो। ये भगवान के दर्शन का रहस्य है। और इसी तरह से आप देखो, जब हम देखते हैं दर्शन करते हैं तो हम दर्शन करते हैं, लेकिन जो ड्रेसिंग करके आते हैं ना भगवान का, वो जब आके दर्शन करते हैं तो आप देखो, दे कीप डिस्कसिंग अमाउंट देमसेल्स, अरे मैंने ये टर्बन भी ऐसा लगाया, फिर वो ऐसा लगाया, फिर वो गिर गया, फिर मैंने चेंज किया, फिर मैंने ऐसा लगाया, वो फिर कहते हैं कि हाँ ये मैचिंग बराबर नहीं हुआ, ये मैचिंग बराबर होना चाहिए था, कल मैं ऐसे करूँगी वैसे करूँगी। तो जो अंदर से श्रृंगार करके आए हैं उनका दर्शन करने का तरीका अलग होता है, वो अलग दृष्टि से भगवान को देखते हैं और अपना प्लानिंग करते रहते हैं कि आज मैं ऐसा किया तो कल ऐसा करूँगी ऐसा करूँगा। वो भाव हमको पकड़ना चाहिए। ठाकुर जी जो है ना वो ललित माधव हैं, मतलब क्या, उनको अच्छे अच्छे वेश पहनने को अच्छा लगता है बहुत, इज ऑलवेज हैप्पी इन ड्रेसिंग वेरी ब्यूटीफुली, इसलिए उनका नाम क्या है, ललित माधव। उनको जगन्नाथ जी भी बहुत बड़े ललित माधव है, उनको उनके कितने 20-25 श्रृंगार है उनका वर्णन किया किताब में, कि वो कितने प्रकार के वेश पहनते हैं, अलग अलग दिन में कितने प्रकार के वेश पहनते हैं और साल में अलग अलग उत्सव में अलग अलग वेश धारण करते हैं, वो कितना वर्णन उनका है। वो कृष्ण कथामृत नाम का किताब आती है, उसके अंदर कितने अलंकारों का फोटोग्राफ दिया हुआ है जगन्नाथ जी। तो ये सारा आनंद की खान है सब, ये आप देखते रहो और आपका पेट कभी भरेगा ही नहीं उनको देख के। वो बेश आपने इस साल देखा, अगले साल देखेंगे तो और आपका आनंद आएगा और आपको देखने की इच्छा रहेगी। चैतन्य महाप्रभु वो छोड़ते नहीं थे, वो उनको वृंदावन जाना था तो भक्त कहते थे अभी ढोल यात्रा आ रही है, अभी धुरात्रा करके जाओ, फिर निकलने लगे, बोलते अभी ओढ़ चष्टी आने वाले, अभी वो ठंडी आ गई तो गर्म कपड़े धारण करने वाले हैं, थोड़ा वो देख के जाओ आप। फिर बोलते अभी होली आने वाली है, फिर बोलते रथ यात्रा आने वाली है, फिर बोलते ये आने वाला है, फिर वो आने वाला है, जन्माष्टमी आने वाली है। साल भर कुछ ना कुछ चलता है उधर, सब जगह चलता है ऐसा नहीं, द्वारका में भी चलता है, वृंदावन में भी चलता है, सब जगह पर कुछ ना कुछ चलते रहता है। क्यों? भक्त लोग सेवा करते हैं, भगवान उनको रिस्पॉन्स देते रहते हैं, भक्तों लोगों को आनंद होता है, भगवान को आनंद होता है, और ये सिलसिला चलते रहता है, देयर इज नो एंड टू दैट, अनलिमिटेड आनंद। तो भगवान के 64 प्रकार की सेवा भगवान की रूप गोस्वामी ने बताई है, 64 काइंड्स ऑफ सर्विसेस, उसमें 6 सेवाएं भगवान की प्रमुख मानी गई है रूप गोस्वामी बताते हैं। वो कौन सी है मालूम है आपको? सबसे बड़ी सेवा है भगवान के नाम का जप, नामस्मरण, नाम कीर्तन। दूसरा है भक्तों का संग। तीसरा है श्रीमद् भागवत का पठन। चौथा है धाम का निवास। पांचवा है तुलसी की सेवा। और छठवा है भगवान के विग्रह की सेवा। ये 6 चीज जो है वो 64 में भी प्रधान मानी गई है। और ये 6 सेवा करने से हम भगवान के बहुत निकट, व्यक्तिगत रूप में निकट हो जाते हैं। इसमें हर एक अंग भी अपने आप में पर्याप्त है, लेकिन हम इतने परफेक्ट नहीं हैं, इसलिए हमको 5 चीज़ें साथ में करनी पड़ती हैं। क्या बताया मैंने? भगवान के नाम का जप, भक्तों का संग, श्रीमद् भागवत का अध्ययन यानी कि ग्रंथों का अध्ययन, और धाम में निवास, तुलसी की सेवा और विग्रह की सेवा, चाहे वो माला बनानी हो, श्रृंगार करना हो, भोग बनाना हो, और किसी प्रकार की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सेवा हो। ये सब करने से हमको ये अनुभूति होगी कि भगवान व्यक्ति है, हमारे जैसे पर्सन हैं, और रिस्पॉन्ड भी करते हैं वो, इसका अनुभूति आपको होगी। वो अनुभूति होते हुए बाद वाद विवाद की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, अनुभूति तो अनुभूति होती है। तो अभी इतना कहकर आज की सभा हम समाप्त करते हैं, और अभी माता जी आप आइए इधर और सब लोगों को ये महाप्रसादी का स्पर्श कराइए। हरे कृष्णा।